परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू ले गया।
इस जैसे कितने ही गीतों को संगीत देने वाले ओमकार प्रसाद मदन गोपाल नैयर को हिंदी फिल्म संगीत का मोहम्मद अली कहा जाता था। फिल्म संगीत के रसिया उनकी हर धुन में एक खास किस्म का पंच देने की अदा पर मर मिटते थे। कहीं उनको रिदम किंग कहा जाता था तो कहीं ताल का बादशाह। ओपी नैयर को छोड़कर किसी भी भारतीय संगीतकार ने लता मंगेशकर की आवाज का इस्तेमाल किए बिना इतना सुरीला संगीत नहीं दिया है।
के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
1926 में लाहौर में जन्मे ओपी नैयर ने 1952 में फिल्म आसमान से अपना संगीत करियर शुरू किया था, लेकिन उनको राष्ट्रीय पहचान मिली थी गुरुदत्त की फिल्मों आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, सीआईडी और तुम सा नहीं देखा से। ओपी नैयर को नजदीक से जानने वाले और इस समय दुबई में रह रहे सिराज हाँ बताते हैं।
साहब बहुत बहुत ज्यादा गहरा उनका जो रिलेशनशिप थी। गुरुदत्त का जो इंट्रोडक्शन नैयर साहब का गुरुदत्त से कराया था वो गीता दत्त से कराया था। उस वक्त वो फियांसे थी, उस वक्त शादी भी नहीं हुई थी। गीता दत्त ने गुरुदत्त से कहा कि भाई अगली फिल्म के लिए आप, उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि किसको आपने चूज किया, उन्होंने कहा अगली फिल्म के लिए आप इनको लीजिएगा, ये दिस मैन इज गोइंग टू गो प्लेसेस। तो गुरुदत्त ने उनको एक्सेप्ट किया, वो फिर आर पार फिर बनी, फिर मिस्टर एंड मिसेस 55, सीआईडी और कितनी और फिल्में बनी। बहुत ज्यादा उन दोनों का क्लोज था। फिर गीता दत्त बीच में बड़ी फेवरेट सिंगर थी शुरू के अर्ली ईयर्स में। कोई मेरी उनके साथ मीटिंग नहीं होती थी ऐसी मुकर जिसमें गुरुदत्त का कहीं नहीं कहीं किसी किसी वजह से उनका नाम नहीं आ जाता था हमारे कॉन्वर्सेशन में।
अरे जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी,
किसी की अदाओं से मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी।
50 के दशक में ऑल इंडिया रेडियो ने ओपी नैयर के कुछ गानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनकी नजर में वो कुछ ज्यादा ही आधुनिक थे। ये अलग बात है कि रेडियो सिलोन पर वो गाने इतने लोकप्रिय हुए कि उन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
एक वो जो गाना बनाया था इन्होंने फिल्म सीआईडी में, जाता कहाँ है दीवाने सब कुछ यहाँ सब, तो उसमें एक वर्ड है फिफी, FIFI। तो वो कहा कि साहब ये जो वर्ड है ये वो नाजेबा है, नाशायस्ता है, बच्चों पे यंग लोगों पे ज्यादा इसका बुरा असर होगा। तो वो साहब वो उन्होंने कहा पूरा गाना बैन कर दिया। हालांकि ये कोई ऐसी चीज नहीं थी। अब आप देखिए कि कैसे कैसे फिल्दी वर्ड्स लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी जबान में, मगर उस वक्त का बात थी तो ये हो गया। हालांकि इसको कोई बुरा मतलब नहीं था। बहरहाल अच्छी बात ये थी कि रेडियो सिलोन वाले वो उस गाने को करते थे और वो नंबर वन गाना था रहा। इस वक्त भी आप सुने वो गाना अभी तक उतना ही मकबूल है जितना उस वक्त था, और सबसे ज्यादा फेवरेट गाना, सबसे ज्यादा हिट, सो मच सो कि वो गाने को अभी मेरे ख्याल 2 साल पहले 2015 में बॉम्बे वेलवेट एक फिल्म बनी थी उसमें दोबारा इनकॉर्पोरेट किया गया।
आशा भोसले को आशा भोसले ओपी नैयर ने बनाया। उन्होंने आशा की आवाज की वर्सेटैलिटी और रेंज का पूरा फायदा उठाया। उनके रोमानी संबंधों ने भी उनके गानों में एक खास किस्म की चिंगारी भर दी।
बॉलीवुड के हॉलीवुड में भी किसी का नहीं हुआ है, ना हीरो हीरोइन का, तो ये तो एक संगीतकार और सिंगर का था, मगर उनके जो था रिलेशनशिप वो उसमें रोमांस में बदल गई। यानी 14 साल 58 से लेके 1972 तक, यानी बहुत ज्यादा इंटेंस। और आप ये सोचिए कि आप इन हिंदुस्तान में मुंबई में एक मैरिड आदमी जिसके 4 बच्चे हैं और एक जो डाइवोर्सी है, वो खुले आम ये लोग फिरा करते थे। नैयर साहब का एक वो अपार्टमेंट था, पेंट हाउस था, जिसमें ये लोग रिहर्स वगैरह रिहर्सल करते थे। नैयर साहब ने एक बड़ा उनका फेवरेट किसी जर्नलिस्ट को उन्होंने उन्होंने कहा था लव इज ब्लाइंड, जो आप लोग आमतौर पर कहते हैं, उन्होंने कहा टू मी लव वॉज नॉट जस्ट ब्लाइंड, इट वॉज ऑल्सो डेफ, क्योंकि आशा की आवाज के बाद में बाकी और आवाजों को मैं सुन नहीं पाता था। तो इसी वजह से शमशाद बेगम और गीता दत्त से वगैरह से किनारा कशी इख्तियार कर ली।
मशहूर संगीत इतिहासकार राजू भारतन अपनी किताब ए जर्नी डाउन मेमोरी लेन में लिखते हैं कि ओपी नैयर का आशा भोसले के साथ एक तरह से ऑब्सेशन था।
ओपी नैयर की आशा भोसले के प्रति आसक्ति इस हद तक थी कि एक बार उन्होंने बिना कोई शब्द कहे गीता दत्त का फोन रख दिया था। गीता दत्त ने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया था कि मैंने ऐसी क्या खता की, क्या आप मुझे गाने के लिए नहीं बुलाते। ये वही गीता दत्त थीं जिन्होंने ओपी नैयर की गुरुदत्त से पहले पहल सिफारिश की थी। ओपी नैयर का आशा भोसले के साथ प्रेम संबंध 14 सालों तक चला। एक जमाने में ओपी नैयर की कैडलक कार में घूमने वाली आशा भोसले ने 1972 में अपने जीवन के इस संगीतमय अध्याय को खत्म करने का फैसला किया।
इसके बाद आशा भोसले और ओपी नैयर ने एक छत के नीचे कभी कदम नहीं रखा, लेकिन इससे पहले उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया जिसे 1973 का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। आशा उस समारोह में नहीं गई, ओपी नैयर ने उनकी तरफ से ट्रॉफी ली, लेकिन घर वापस लौटते हुए उन्होंने वो ट्रॉफी सड़क पर फेंक दी।
चैन से हमको कभी, वो आखिरी गाना उनका जरूर था, मगर आप ये देखिए कि उस गाने को फिल्म फेयर अवार्ड मिला और उसमें आशा भोसले जो थी वो अपना अवार्ड एक्सेप्ट करने भी नहीं गई कि उनको पता था कि नैयर साहब वहाँ होंगे। नैयर साहब वो सो ग्रेशियस कि उन्होंने उनके बिहाफ पे वो अवार्ड एक्सेप्ट किया, कि एक्सेप्ट तो कर लिया उन्होंने अवार्ड। उनके साथ जो लिरिसिस्ट एसएच बिहारी साहब जो थे उनके साथ थे, ये लोग दोनों गाड़ी में आ रहे थे। इस वक्त रात के आप इमेजिन कीजिए कि सन्नाटा था जिस सड़क से आ रहे थे, और उन्होंने शीशा नीचे किया उन्होंने, और वो ट्रॉफी जो उस वक्त तक अपने हाथ में पकड़े हुए थे उन्होंने खिड़की से बाहर फेंकी, जो जाके खंबे से जाके टकराई, और वो खंबे की आखिरी जो उन्हें आवाज सुनी थी वो जैसे कोई चीज चूरा चूर हो जाती है। तो उन्होंने बिहारी साहब से कहा, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, आज इस आवाज से ये मैंने जो आवाज सुनी है, आशा इज आउट ऑफ माई लाइफ फॉरएवर।
ओपी नैयर ने अपने पूरे करियर में लता मंगेशकर से एक भी गाना नहीं गवाया, इसके पीछे क्या वजह थी? ओपी नैयर के एक और करीबी रोहन पुसलकर बताते हैं।
उस टाइम की और अपनी हिंदुस्तानी म्यूजिक की जो एम्प्रेस है लता मंगेशकर जी है, उनके साथ एक भी गाना नहीं हुआ उनका, और फिर भी उस टाइम में वो मशहूर, इतने मशहूर, इतने ज्यादा मशहूर हुए। ये डिसीजन लेना कोई इजी चीज नहीं है। कभी उन्होंने हिट पिक्चर देख के या करके गाना नहीं किया, जो मैवरिक ये होता है कि भाई पिक्चर चलेगी नहीं, मेरा कैसे होगा, क्या होगा। अगर जो चीज उनको अच्छी लगती थी वो करते थे, बस जो नहीं है वो खत्म बात। ना डायरेक्टर की उन्होंने सुनी कभी, और ये मेरी पर्सनल उनके साथ डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा रोहन मैंने ना कभी किसी का सुना है ना मैं कभी किसी का सुनूंगा। उनका ये कहना था कि जो उनको आवाज चाहिए थी, जो उनको जो एक कैरेक्टर वॉइस का चाहिए था, वो उनके पास नहीं था, और बस यही कारण है। नो रूमर्स, नो नथिंग, वो सूट नहीं किया मेरी म्यूजिक को, मैंने नहीं लिया।
60 के दशक में एक बार ओपी नैयर की मोहम्मद रफी के साथ भी अनबन हो गई, और कुछ समय के लिए उन्होंने रफी से कोई गाना नहीं गवाया।
रफी साहब भी वक्त के पाबंद थे और नैयर साहब भी वक्त के पाबंद थे। अब आप इमेजिन कीजिए कि 70 म्यूजिशियंस हैं, वो रुके हुए हैं, उन्होंने टाइम रुका हुआ है, रफी साहब का इंतजार हो रहा है। रफी साहब उस जमाने में नेचुरली सेलफोन वगैरह कोई नहीं थे, रफी साहब को सबको मालूम था वो वक्त के पाबंद हैं, वो आने वाले हैं। रफी साहब जैसे लेट बंदा हो जाए तो नेचुरली वो तो खैर सब लोग बैठे हैं, ये सब भी बैठे हुए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। रफी साहब कोई एक घंटे के बाद वहां आए और उन्होंने कहा कि साहब सॉरी मेरी एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, मैं अब वो समझता हूँ अभी होती है, अभी होती है वो। नए साहब देखो कोई बात नहीं, के बाद उन्होंने म्यूजिशियन से कहा कहा कि भाई शुरू करो। अब उसके बाद रफी साहब क्योंकि इतने ऑनेस्ट थे तो एक म्यूजिशियन था, उन्होंने पूछा कि रफी साहब वो कहाँ प्रॉब्लम क्या हो, डिले कहाँ हो गई थी। अब आप सोचिए कि ये पंच लाइन ये है, तो उन्होंने कहा कि वो दरअसल वो शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग थी और वहां कुछ ये हो गया। शंकर जयकिशन का जैसे नाम उन्होंने सुना नैयर साहब ने, उन्होंने कहा क्या शंकर जयकिशन, उसकी वजह से तुम्हारे एक घंटे तुम आए और मैं और तुमने फोन भी नहीं किया, बस दैट वॉज इट। ही सेड नो नो मोर रिकॉर्डिंग, रफी साहब अपने घर जाइए, म्यूजिशियन से कहा अपने घर जाए, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम नॉट इन अ मूड ऑफ डूइंग एनी रिकॉर्डिंग टूडे। वो गाना जो था उन्होंने फिर महेंद्र कपूर से रिकॉर्ड कराया। इसके बाद ये सेवरल ईयर्स रफी साहब का साथ नहीं हुआ। रफी साहब भी थोड़े से बदल हो गए, नैयर साहब ने तो इतनी बड़ी बात कर दी थी उनके साथ। रफी साहब वॉज वेरी हर्ट।
आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है।
रफी नैयर के बारे में एक कहानी ये भी मशहूर है कि मधुबाला अपने प्रोड्यूसर से कहा करती थी कि अगर वो ओपी नैयर को संगीतकार के रूप में लेंगे तो वो उनके लिए अपनी फीस घटा देंगी।
मधुबाला और ओपी नैयर का बड़ी स्पेशल रिलेशनशिप थी। देयर वाज नो रोमांस इन्वॉल्वड बट देयर वाज म्यूचुअल एडमिरेशन फॉर ईच अदर। दिस स्टार्टेड जब मिस्टर एंड मिसेस 55 वगैरह ये बन रही थी, तो उन्होंने ये ऐलान किया था। 6 फिल्में इस ऐलान के बाद बनी थी जिन्होंने कहा था कि मैं अपनी फी पे डिस्काउंट दूंगी अगर आप ओपन ईयर को लें। तो एक बल्कि कोई ऐसा केस था उसमें ये था कि वो उन्होंने मधुबाला से कहा हम तो वैसे भी आपके ऐलान के बगैर भी हम उसको म्यूजिक डायरेक्टर ओपन ईयर का ले रहे थे। मैं आपको बताऊं इट्स समथिंग वेरी फनी रहा कि उन्होंने कहा नैयर साहब से कि भाई आप तो इतने गुड लुकिंग है तो आप तो हीरो भी बन सकते हैं। तो उन्होंने मजाक में कहा यार ये रहने दो, मैं यही म्यूजिक कर रहा हूँ, यही बहुत है मेरे लिए, आई डू नॉट वांट टू बिकम अ हीरो, मैं बिल्कुल फ्लॉप हो जाऊंगा।
1989 में अचानक ओपी नैयर ने अपना घर छोड़ दिया और थाने के नखवा परिवार के साथ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगे। क्या वजह थी नैयर के अपना घर परिवार छोड़ने की?
फैमिली को उन्होंने नहीं छोड़ा, फैमिली ने उनको छोड़ दिया। उनकी जगह कोई भी होता तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करती। देखिए कि आपकी अहलिया बहुत ही फेथफुल वाइफ, केयरिंग वाइफ, एंड देन यू हैव 4 children, 4 बच्चे उनके। अब आप खुले आम उसी शहर में रह रहे हैं, आशा भोसले के साथ उनका इश्क चल रहा है और ऐसा वैसा नहीं, 14 साल बरकरार रहा इंटेंस, खुले आम उनको, फैमिली को, बच्चों को, वाइफ को खबरें इधर उधर से मिलती थी, भाई दिस इज मुंबई आफ्टर ऑल। तो अब वो ये कशीदगी हो गई थी। नैयर साहब ने आखिर में ये कहा कि सारी जो चीजें उन्होंने, उस चीज का एहसास था, बहुत मलाल था उनको और कि ये यानी ये मैंने गलती की, मगर ये था कि बाय दैट टाइम द डैमेज वॉज डन। तो उन्होंने फिर 94 में अपने घर में जो कुछ उनके पास था, बैंक अकाउंट, कार, अपार्ट प्रॉपर्टी वगैरह, सब अपने वाइफ और फैमिली को छोड़ के और वो जाके उन्होंने घर छोड़ दिया और बिल्कुल नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट की। यानी आशा भोसले ने भी छोड़ दिया तो उनकी पोजिशन भी बड़ी ऑकवर्ड हो गई थी फैमिली के सामने, कहने की मैं अपनी फैमिली को किस तरह से मुंह दिखाऊं कि मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया उस औरत के लिए और उस औरत ने मुझे छोड़ दिया, तो अब मैं कहाँ कर रहा, ना मैं इधर कर रहा ना उधर।
नखवा परिवार के साथ ओपी नैयर के रहने की कहानी एक एसटीडी टेलीफोन बूथ पर शुरू हुई थी। उस बूथ को चलाया करती थी रानी नखवा।
तो वो सुबह 7 बजे मैंने खोला था वो दुकान और मैं मेरा काम कर रही थी, तो वो आए लुंगी और कुर्ता पहन के, ऊंचे पूरे एकदम गोरे चिट्टे। उन्होंने बोला बेटा मुझे फोन करना है, और फिर उन्होंने मुझे बताया बेटा मेरे लिए कोई ऐसे घर ढूंढो फैमिली हो, पेइंग गेस्ट रहना है मुझे। मैंने बोला ठीक है, मैंने सोचा ही नहीं, एक पल भी नहीं सोचा, मैंने आप मेरे घर आएंगे। उन्होंने वो देखते रह गए, तुमने घर में पूछा नहीं बेटा अभी तक, मतलब मैं पूछती हूँ आप मेरे घर में आएंगे? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ ना उसको मैं फोन करने को बोलता हूँ तुम्हें, और वो उसको पता देकर लिखवा देना तुम्हारा। तो ठीक है, फिर दूसरे दिन शाम को घर पे आ गए मैं 4 बजे।
नैयर रानी के घर पर ताउम्र 12 सालों तक रहे। वो परिवार के काम में हाथ बटाते, यहाँ तक कि रसोई घर में जाकर सब्जियां भी काटते।
मैं तो 5 बजे उठ जाते थे, वॉक के लिए जाते थे, 1 घंटा वॉक करते थे, 5-6 बजे आते थे वापस वॉक करने, मैं भी उनके साथ जाती थी, फिर हम लोग वापस आते थे, फिर चाय बनती थी उनके लिए, उन्होंने चाय भी बनाने सिखाई उनके टाइप की, एक कप चाय में वो मतलब चाय कितनी उबालनी है, उबालनी भी नहीं है, वो उबलते हुए पानी में से डाल नहीं है चाय पत्ती। उर्दू में रामायण थी उनके पास, रामायण पढ़ते थे, दुख भंजनी साहब पढ़ते थे बुक। फिर खाना खा के दोपहर को थोड़े से सो के फिर शाम को पिक्चर देखते थे, वो भी इंग्लिश, हिंदी बिल्कुल कुछ देखते नहीं थे। शाम को फिर जल्दी सो जाते थे 8:30-9 बजे। और खाना भी बनाना उन्होंने हमें सिखाया, कि मतलब हम मराठी स्टाइल का बनाते थे ये, हमें चिकन मटन तो हम कोली लोग हैं, हमको चिकन मटन बनाना तो आता है अच्छी तरह, लेकिन उनका स्टाइल का हमें वो मतलब नारियल उनको पसंद नहीं था। फिर उन्होंने हमें पंजाबी स्टाइल का खाना भी, फिर मेरे ग्रैंडफादर जैसे ही थे, वो हर एक चीज में वो सिखाते थे, मम्मी को भी डांटते थे, देश से आए तो सबको ही डांटते थे, कैसी जिंदगी जीनी है हमने उनसे सीखी है। वो राजा की तरह ही जीते थे, शराब भी पीते थे तो वो ब्लैक लेबल विस्की पीते थे, बियर पीते थे, उसके भी बक्से भरे रहते थे, मतलब कपड़े भी पहनेंगे तो कला निकेतन से लुंगी निकाल लेके आएंगे, खादी ग्रामोद्योग से उनके शर्ट्स बनते थे, हर एक चीज का स्टाइल था उनका।
ओपी नैयर का जितना उतार चढ़ाव भरा जीवन रहा उतना शायद किसी का नहीं रहा। उन्होंने प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को छुआ और फिर गुमनामी की गहराई में भी चले गए। उन पर एक विद्रोही और अपरंपरागत संगीतकार होने का तमगा भी लगा। 81 वर्ष की आयु में ओपी नैयर ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनका संगीत कभी नहीं मर सकता, वो कालजयी है।
बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में, हुजूर आप आए कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।